ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का भारत का संकल्प वैश्विक चर्चाओं का केंद्र बिंदु है और यह बुनियादी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन से प्रेरित है। श्री मोदी ने इसका श्रेय भारत में हो रहे परिवर्तनकारी बदलावों को दिया जो विकसित भारत की नींव रख रहे हैं। इन बदलावों का प्रमुख पहलू सामाजिक, भौतिक और डिजिटल क्षेत्र सहित बुनियादी ढांचा है। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए बोल रहे थे।
यहाँ नई रेल लाइनें बिछाने का काम, चौड़ीकरण और बिजलीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अनेक रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में रेल ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। दो और रेलवे ओवरब्रिज पश्चिम बंगाल को मिले हैं। ये सारे काम बंगाल के लोगों का जीवन आसान बनाने में बड़ी मदद करेंगे। हमने यहाँ के एयरपोर्ट को भी उड़ान योजना से जोड़ा है।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव में भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश की प्रगति को प्रदर्शित करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इसी वर्ष तैयार हो जाएगी। हैदराबाद में कल केशव स्मारक शिक्षा समिति के 50वें स्थापना दिवस समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में से एक बनने जा रहा है। श्री वैष्णव दो दिन के तेलंगाना दौरे पर हैं। वे आज IIT हैदराबाद में दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे दोपहर काजीपेट में 500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल विनिर्माण इकाई के कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 7,48,00,000 से अधिक फॉर्म एकत्र किए जा चुके हैं। ये कुल गणना प्रपत्रों का 94.68% है। आयोग के अनुसार अब केवल 5.2% मतदाताओं को ही अपने भरे हुए फॉर्म जमा कराने हैं। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून अधिवेशन 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने AK-47 और स्वचालित राइफल सहित बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ स्थल और आसपास के इलाके में गहन छानबीन अभियान जारी है। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट।
इस सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों के विरुद्ध सामूहिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता व्यक्त करना है। दो दिन का ये सम्मेलन विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर केंद्रित है। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और अन्य गणमान्य अतिथि सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में देश भर के 100 आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के युवा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसका समापन 20 जुलाई को काशी घोषणा पत्र के साथ होगा। ये दस्तावेज नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
मौसम विभाग ने आज केरल के 5 जिलों मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 5 दिन तक बादल छाए रहने और गरज तथा चमक के साथ हल्की वर्षा का अनुमान है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। खेलों में भारतीय महिला पहलवानों ने हंगरी के बुडापेस्ट में पोलाक इमरे और वर्गा यानोश मेमोरियल टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित 4 पदक जीते। इसके अलावा फिडे महिला शतरंज विश्व कप में ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, डी हरिका आर वैशाली और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।